भगवान बनने के सिवाय और कुछ नहीं है। एक बार भगवान के सामने छोटे बन जाए और इधर उधर की बातें ना करें मंदिर में। भगवान के दर्शन करते समय इष्टोपदेश पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान के दर्शन करते समय एकोहम निर्ममः शुद्ध ज्ञानी योगींद्र गोचर, ये सारी बातें भगवान केवल ज्ञान में आपसे पहले जानते हैं। आप किसको सुनाने जा रहे हैं? भगवान के सामने आत्मा की बातें मत करो। भगवान के सामने अपनी कमियों को प्रकट करूं, उससे कल्याण होगा। भगवान के सामने द्रव्य दृष्टि मत लाओ। भगवान के सामने अपनी पर्याय की जो हीनता है उसका एहसास करो कि हे भगवान। और फिर वो सापेक्ष है। क्या है कि जैन दर्शन में नैव को निरपेक्ष नहीं लिया गया। द्रव्य से तो मैं और आप दोनों जीव हैं, लेकिन पर्याय से आप तीन लोक के नाथ और मैं तीन लोक में अनाथ। क्या भगवान त्रिलोकी नाथ है और मैं त्रिलोका नाथ हूं? त्रिलोका नाथ क्या विग्रह होगा उसका? त्रिलोक धन अनाथ। लेकिन चूंकि आज मुझे आप मिल गए हो, इसलिए मैं अपने आप को अनाथ नहीं समझता। त्रिलोकी नाथ जिसके नाथ हो वो अनाथ कैसे हो सकता है? बस मेरे अंदर यही विनय बनी रहे तो मुझे देर नहीं लगेगी। और कहीं मेरे अंदर कोई थोड़ा भी अभिमान आ गया, सबसे बड़ा बाधक तत्व मानव के जीवन में यदि कोई है तो वो है उसका मान। मान को छोड़ दे तो मानव भगवान बन जाए। लेकिन वो भगवान के सामने बोलता है कि हे भगवान, मैं भगवान हूं। नहीं, ये चीज बोलने की नहीं है, सुनने की है। किसी एकांत क्षेत्र पर जाइए आप। हमने एक स्तोत्र लिखा था बहुत पहले, मृत्युंजय स्तोत्र। उसमें एक हमने उत्प्रेक्षा अलंकार में एक बात लिखी कि किसी एकांत स्थान पर, जैसे नैनागिर है या फिर कोई भी सिद्ध क्षेत्र, मुक्तागिरी के ऊपर के पहाड़ पर चले जाएं और वहां पर आप अकेले चले जाएं दर्शन करने और भगवान से पूछें कि आप कौन हैं। क्या कि भगवान को ही तो अपन कई बार नहीं पहचानते ठीक से। भगवान से पूछे आप कौन हैं, तो उस शांत प्रांगण में आवाज गूंजती है। ये बात आपको पता हो, शांत प्रांगण में आवाज गूंजती है। और आवाज गूंजती है तो क्या सुनाई देगा अपने को? भगवान से आपने पूछा आप कौन हैं, तो वो आवाज गूंज कर के आएगी आप कौन हैं। देखो ये निश्चय नय की बात आ रही है। यहां पर क्रियाएं व्यावहारिक है लेकिन जवाब निश्चय नय का मिल रहा है। अपन ने भगवान से पूछा आप कौन हैं, तो प्रतिध्वनि में जवाब आया आप कौन हैं। फिर अंधेरे अंदर अपनी भक्ति कहती है और भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर के कंठ से एक स्वर निकलता है कि आप तीन लोक के नाथ हैं। और फिर उसकी भी प्रतिध्वनि होती है वहां से। जो पहला प्रश्न था उसका जवाब यहां आ गया, आप तीन लोक के नाथ हैं। इसका नाम है निश्चय नय। क्या मतलब? वहां से भगवान ने जवाब दे दिया कि निश्चय से तू भी भगवान है। लेकिन अब मुझ में और भगवान में जो फासला है उसको भी तो देखना जरूरी है। कैसे देखोगे? तो उसके लिए वो दूसरा नेत्र भी भगवान ने ही दिया है, व्यवहार नय वाला। देखो जरा व्यवहार नय से कि मुझ में और भगवान में कितनी दूरी है। एक सागर प्रमाण दूरी है। सागर प्रमाण काल की अपेक्षा नहीं, माने एक समुद्र के बराबर। मैं समुद्र के इस तट पर खड़ा हूं और प्रभु जिनेंद्र भगवान समुद्र के उस पार है, यानी बीच में संसार सागर लहरा रहा है मेरे सामने, और वो संसार सागर के उस पार है। क्या अलौकिक स्वरूप है जिनेंद्र भगवान का। अब करो दर्शन भगवान के, कैसे नहीं आएगी भक्ति अंदर में। जब अपनी लघुता और प्रभु की प्रभुता दृष्टि में आती है तब भक्ति करी नहीं जाती, भक्ति प्रकट करनी नहीं पड़ती, किंतु भक्ति का अंदर से प्रवाह फूट पड़ता है। कोई ताकत नहीं है कि उस भक्त की भक्ति को रोक ले। जब ये पता चल जाए कि आप प्रभु हैं और मैं लघु हूं, क्या दोनों शब्द दो अक्षरों के हैं, लेकिन वो प्रभु है और मैं लघु हूं, और एक बार बस ये भक्ति आ जाए अंदर में, तो फिर प्रभु उस लघु को लघु नहीं रहने देंगे, और लघु प्रभु की भक्ति से लघु नहीं रह सकेगा। ये वो प्रभु है जिनकी भक्ति लघु को प्रभु बना देती है। कितनी अलौकिक बात है ये। कहीं संसार में किसी दर्शन में ये मान्यता नहीं मिलेगी आपको। जो एक शाश्वत सत्य रूप मान्यता है, ये चूंकि गले नहीं उतरती लोगों के। अन्य मतों में ये धारणा है कि प्रभु हमेशा प्रभु रहते हैं, लघु हमेशा लघु रहते हैं, लेकिन जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि नहीं, मैं भी पहले लघु ही था तेरे समान, पर मैंने प्रभु के पास आकर अपने को लघु माना, और जब मैंने अपने को लघु माना तभी मेरे अंदर भक्ति पैदा हुई। मैंने भी अतीत में ऐसी भूल की थी कि मैं भी निश्चय से अपने को और भगवान को समान समझता हुआ व्यवहार में भी वही बात करने लगा था। निश्चय से तो एक अलग बात होती है, लेकिन व्यवहार में भी मैं यही बोलने लगा था, जो मैं हूं वो है भगवान। ये मैं व्यवहार में भी बोलने लगा था। व्यवहार में बोलने की बात नहीं थी ये, व्यवहार में तो आप है और मैं एक तुच्छ दीनहीन अनाथ संसारी। इसलिए हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं। जो बड़ा होता है वो किसी की शरण में नहीं जाता, मैं छोटा बनकर आपकी शरण में आया हूं। जब तक भगवान की शरण में छोटा बनकर नहीं आएगा तब तक छोटा बना रहेगा। क्या जब तक भगवान की शरण में छोटा बनकर नहीं आएगा तब तक छोटा बना रहेगा, और समझता क्या रहेगा अपने को बड़ा, बना रहेगा छोटा। और जिस दिन अपने को छोटा समझकर भगवान के पास आ जाए उस दिन से बड़ा बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, सम्यक दर्शन हो गया। जिस जीव ने अपने को अणु और भगवान को महानतम, अपने को लघुतम और भगवान को महानतम स्वीकार कर लिया, बस उसका उद्धार उसी क्षण से प्रारंभ हो गया। इसके बिना भक्ति असंभव है। भक्ति की बात कर लेना सरल है, भक्ति का स्वांग कर लेना भी सरल है, लेकिन भक्ति का एहसास कर लेना अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए संसार में करोड़ों लोग जिन मंदिर में आने वाले हो सकते हैं, लेकिन यथार्थ भक्त बिल्कुल इन्हें गिने होंगे। तो वो भक्त तभी बनता है जब उसका अहंकार टूटता है। तो हे भगवान, बस फिर भगवान से वो कहेगा कि आप ही मेरा बेड़ा पार कीजिए। ये भाषा तब बोलना सीखता है, एक वो कर्तृत्व की भाषा है जो मिथ्या दृष्टि जीव बोलता है। वो सोचता है कि भगवान सब अपने काम छोड़ करके मेरा बेड़ा पार लगा दे, मुझे कुछ भी ना करना पड़े। और एक वो सम्यक दृष्टि भी भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान आप ही मुझे पार लगा सकते हैं, मैं तो असमर्थ हूं। पर वो कामचोर नहीं है सम्यक दृष्टि, वो भगवान जो भी बता रहे हैं पुरुषार्थ की विधि वो करने को तैयार है। इतना ही तो फर्क है सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में। मिथ्या दृष्टि भगवान भरोसे पड़ा रहता है, और सम्यक दृष्टि भगवान पर आस्था रखते हुए भी अपने पुरुषार्थ को नहीं छोड़ता, और पुरुषार्थ को न छोड़ते हुए भी पुरुषार्थ का अभिमान कभी नहीं करता। वो विनम्र बना रहता है कि भगवान आपकी ही कृपा से, आपकी ही शरण से मेरा कल्याण होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो अनादिकाल से भटक रहा हूं, पंच परिवर्तन करता आ रहा हूं, मेरे में क्या ताकत है, कुछ नहीं, मैं तो दीनहीन संसारी प्राणी हूं, आपकी कृपा से ही मेरा बेड़ा पार होगा। और फिर जब आराधना करता है, जब वो भक्ति रस आता है अंदर में, उसके पहले तो जीव का सम्यक दर्शन का ही ठिकाना नहीं रहता। बिना भक्ति के सम्यक दर्शन नहीं, और सम्यक दर्शन का ही दूसरा नाम भक्ति है। शील पाहुड़ में एक गाथा आती है, अरहंते सुह भक्ति सम्मतम, परिभाषा दे दी सम्यक दर्शन की, अरहंत की निस्वार्थ भक्ति का नाम सम्यक दर्शन, खत्म कर दो। जो लोग भक्ति को या सम्यक दर्शन को अलग अलग समझते हैं, भक्ति को राग समझते हैं, उनको सुधार कर लेना चाहिए। भक्ति राग नहीं है, भक्ति के साथ राग होता है और वीतराग अवस्था में भी हो सकती है भक्ति, लेकिन भक्ति क्या है? आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं अरहंते सुख भक्ति, प्रशस्त भक्ति, निस्वार्थ भक्ति सम्यक्त्व है। कोई सांसारिक कामना नहीं है उस भक्ति में, सिर्फ अरहंत के गुणों में अनुराग है, उस भक्ति का ही नाम सम्यक दर्शन है। इसलिए सम्यक दर्शन की बहुत सारी परिभाषाएं जो अपनी चर्चा में आई ना, उसमें एक परिभाषा ये भी और जोड़ लेना कि अरहंत की निस्वार्थ भक्ति भी सम्यक दर्शन है। अब लेकिन उसमें अरहंत का स्वरूप तो समझ में आना जरूरी है, नहीं तो पहचाना नहीं सामने वाले को और फिर उस दोस्ती कर ली तो धोखा हो जाएगा। तो अरहंत भगवान का स्वरूप जान लिया, और भक्ति अपने आप आना ही है, उनके स्वरूप को जानोगे तो भक्ति न हो ऐसा संभव ही नहीं है, निश्चित रूप से आने वाली। कोई पैसे वाला व्यक्ति अपने से अधिक पैसे वाले को देखे तो फिर उसको लगता तो है कि मेरे से आगे है ये, नहीं लगता? निश्चित लगता है। तो अपने से गुणों में जो बहुत बहुत आगे हैं, सागर के उस पार खड़े हैं, ऐसे अरहंत के अगर एक बार दर्शन हो जाए तो लगेगा तो सही कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो उनके चरणों की धूल नहीं हूं, काश मुझे धूल बनने का सौभाग्य मिल जाए, वह धूल धन्य है जो उनकी गजरेखा में पड़ी है, मुझे तो वो सौभाग्य भी नहीं है। कोई ठिकाना नहीं अपने, क्या थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और फिर हम अभिमानी बन जाते हैं, पता नहीं अपने को कौन से गुणस्थान वर्ती मान लेते हैं अपन, लेकिन कुछ नहीं, कहाँ जिनेंद्र भगवान, कहाँ देवशास्त्र गुरु, और कहाँ अपन, अपन एक तुच्छ संसारी प्राणी से बढ़कर कुछ नहीं है। अभी तो यहां तक कान खोल करके बात सुन लो, कौन भव्य है और कौन अभव्य है ये भी पता नहीं है, किसका अभिमान करोगे? क्या है अपने पास? बस एक रास्ता है विनय और भक्ति का, बाकी कुछ नहीं है अपने पास। ओम शांति। 70 गाथाओं का अपन ने स्वाध्याय किया है, लगभग एक महीना बीत चुका है स्वाध्याय प्रारंभ किए हुए, तो एक झलक अपन देख लें फिर भाव परिवर्तन में आगे गति करें। भाव परिवर्तन सबसे भयंकर और सबसे विशाल, सबसे प्रचंड होता है। 12 अनुप्रेक्षाएं। अनुप्रेक्षा का अर्थ बता सकते हैं कि अनु, प्र और ईक्षा, अनु यानि पश्चात, पुनः पुनः बारंबार, प्र यानि प्रकर्षीण अच्छी तरह, ईक्षा, ईक्षा यानि चिंतन करना, बार बार अच्छी तरह चिंतन करना, विचार करना, देखना, सोचना अनुप्रेक्षा है। इसको अपन हिंदी में 12 भावना बोलते हैं। वो कार्य में कारण का उपचार करके बोलते हैं। वास्तव में अनुप्रेक्षा कारण है और भावना उसका फल है, कार्य है। अनुप्रेक्षा करते रहो तो फिर उसका परिणाम जो है संवेग वैराग्य आदि होता है, तो वो उसका फल है। तो इसमें अनित्य अनुप्रेक्षा के अंतर्गत आचार्य स्वामी कुमार कार्तिकेय मुनि कहते हैं, जो कुछ उत्पन्न हुआ है नियमतः नष्ट होने वाला है। पर्याय रूप से संसार में कुछ भी स्थिर नहीं रह सकता, जन्म मरण से घिरा हुआ है, यौवन बुढ़ापे से आक्रांत है, ग्रसित है, लक्ष्मी नश्वर है। इस तरह संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने परिजन यानी पहचान के लोग और स्वजन यानी रिश्तेदार, पुत्र पत्नी, अच्छे खासे मित्र, अपना लावण्य यानी सुंदरता के साथ जो शरीर में एक प्रकार की कांति होती है, चमक होती है, वो घर गोधन आदि सब नए बादल के समूह के समान नश्वर है। नए बादलों का समूह हवा के झोंकों से कहीं गायब हो जाता है, उसी प्रकार ये सारे देखते देखते विलीन होने वाले हैं। जितने संयोग है सब नष्ट हो जाते हैं। फिर इंद्रधनुष के समान अथवा बिजली के समान इंद्रियों के सुख अथवा अच्छे अच्छे सेवक गण हैं, और घोड़े हाथी रथ वाहन आदि सारे पदार्थ देखते देखते नष्ट हो जाते हैं। एक भूकंप आ जाए तो अगले दिन का नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है। पिछले दिन क्या ठाठ थे और अगले दिन सब गायब। जिस प्रकार रास्ते पर चलने वाले को दूसरे पथिकों का समागम होता है, क्षण मात्र सामने से कोई गाड़ी आई, उसके चेहरा देख लिया, अपन आगे बढ़ गए, वो उधर बढ़ गया। बस इसी प्रकार बंधुजनों का जो संयोग है वो भी क्षणिक है, अध्रुव है, देखते देखते समाप्त हो जाने वाला है। बचपन से स्मरण करिए आप, आज तक कितने लोग मिले और उनमें से अब तक कौन कौन साथ है। कई आए और चले गए। कितने ऐसे लोग थे जो बहुत निकट परिचित थे, पर आज उनका स्मरण भी साल में कभी एक आध बार या दो चार साल में एक बार आ जाता है। पहले तो एक दिन नहीं कटता था उनके बिना, आज बरसों बीत चुके हैं। यानी सारे समागम क्षणिक है। ज्ञानानंद ग्रंथ में और सुंदर श्लोक दिए हैं कुछ। यस्य राज्याभिषेक श्री ही प्रभाते त्रिविलोक्यते तस्मिन् नह नितस्यैव चिता धूमश्च दृश्यते। शाम को धुआं उठ रहा है आसमान में, कोई किसी से पूछता है कि ये धुआं कहाँ से आ रहा है, बोले कि सवेरे जिसका राज्याभिषेक हुआ है उसी की चिता का धुआं है। फिर सवेरे सवेरे पुत्र जन्म का जहाँ पर मंगल उत्सव मनाया जाता है, दोपहर में उसी घर से रोने चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो आया था एक दिन भी पूरा नहीं किया उसने, चला गया। सब कुछ नश्वर है, क्षणिक है। शरीर का कितना भी पोषण किया जाए, खूब अच्छे अच्छे पदार्थ लगाकर इसको स्नान कराया जाए, इस पर सुगंध लगाई जाए और अनेक प्रकार के भोजन से भी इसको पुष्ट किया जाए, तो भी जिस प्रकार मिट्टी का कच्चा घड़ा पानी भरने पर विघटित हो जाता है, उसी प्रकार ये शरीर भी नष्ट हो जाता है। 70 साल का शरीर भी कितनी देर में भस्म हो जाता है मरघट में जाकर, कुछ भी समय नहीं लगता, देखते देखते विलीन हो जाता है। जीवन भी कितना क्षणभंगुर है। एक दिन हमने बताया था कि गैरतगंज में कोई दादाजी आकर खंबे से टिक कर बैठ कर रोज उपदेश सुनते थे, दो तीन दिन दिखे नहीं। फिर शाम को जब हम बच्चों के साथ छत पर थे तो थोड़ा सा अंधेरा था, दूर कहीं अग्नि जल रही थी। बच्चों ने बताया कि ये उन्हीं दादाजी की चिता जल रही है जो आपके प्रवचन में सामने खंबे से टिक कर बैठा करते थे। कोई हमेशा टिकने वाला नहीं है, उस कच्चे घड़े में पानी भर दो तो फिर वो सब बिखर जाता है। उसी प्रकार शरीर भी नष्ट हो जाता है। जब पुण्यवंत छह खंड के स्वामी, करोड़ों घोड़ों और लाखों हाथियों के अधिपति, चक्रवर्तियों की लक्ष्मी भी उनका साथ नहीं देती, तो फिर जो हीन पुण्य वाले हैं उनसे लक्ष्मी क्या प्रेम करेगी। लक्ष्मी को किसी से प्रेम नहीं है। जिसके पास पुण्य होता है लक्ष्मी उसके पीछे चलती है, बल्कि उसके नहीं उस पुण्य के पीछे। व्यक्ति भ्रमित होता है कि लक्ष्मी मेरे पीछे है, लक्ष्मी को किसी से प्रीति नहीं होती, लेकिन सबकी लक्ष्मी से प्रीति होती है। हिंदुओं में एक दृष्टांत देते हैं कि एक बार लक्ष्मी और नारायण विष्णु जी में वार्तालाप होता है कि भक्त किसके ज्यादा, मेरे या तुम्हारे। नारायण बोलते स्पष्ट है सब लोग हरि भजन करते हैं, लक्ष्मी को कौन भजता है। तो फिर लक्ष्मी बोलती है कि ये आपको ऐसा प्रतीत होता है, वास्तविकता ये है कि वो सारे हरि भजन करने वाले भी मेरे भक्त हैं। वो कैसे बोले, चलो चल करके देख लें कौन किसका भक्त है, सिद्ध कर लेंगे हम अपनी बात को। तो क्या हुआ कि उनने एक योजना बनाई और फिर वहाँ पर विष्णु जी अपने शेषनाग की शैया पर सुदर्शन चक्र पद्म गदा शंख लेकर के विराजमान हो गए और दुनिया पागल हो गई, भीड़ लग गई। साक्षात नारायण पधारे हैं और सब अपने अपने जो कुछ चढ़ाने योग्य साधन थे वो सब सामग्री लेकर के पहुंच गए पूजा करने। अब इसके बाद थोड़ी देर में पता चला कि एक बुढ़िया है जिसके घर भोजन करती है उसके बर्तन स्वर्ण के हो जाते हैं। तो नारायण को छोड़कर सब लोग अपने बर्तन में उसको भोजन कराने लगे। तो फिर विष्णु जी ने बाद में लक्ष्मी से कहा कि तुम्हारी बात सच निकली, मैं हारा तुम जीती। तो यहां आचार्य कहते हैं कि लक्ष्मी को किसी से प्रीति नहीं है, सबको लक्ष्मी से प्रीति है। चक्रवर्तियों की लक्ष्मी भी जब उनका साथ छोड़ देती है, ब्रह्मदत्त सुभौम चक्रवर्तियों की कथा सुनी आपने, जैसे सुभौम चक्रवर्ती उस मायावी देव के साथ घर छोड़कर फल खाने की इच्छा से बगीचे की तरफ जाने लगता है, मंत्री रोकते हैं कि आप अकेले कहाँ जा रहे हैं। राजा को इस प्रकार प्रयाण नहीं करना चाहिए, लेकिन वो जीवा इंद्रिय में आसक्त होकर उसके पीछे चला जाता है। और जैसे ही चक्रवर्ती घर से निकलता है, चक्र रत्न यहाँ से गायब हो जाता है और उसके अन्य जितने वैभव थे वो भी धीरे धीरे विलीन हो जाते, नौ निधियां गायब हो जाती, काल महाकाल पिंगल आदि। तब फिर प्रजा को समझ में आ जाता है कि अब हमारे चक्रवर्ती सम्राट कभी लौट कर वापस नहीं आने वाले। और वो जो मायावी देव था जो बागवान का रूप बनाकर आया था, वो उनको समुद्र में ले जाता है और अपने पूर्व जन्म का वैर स्मरण कराता है कि जब मैं आपका रसोईया था तब आपने मुझे मार डाला था, अब बोलो कहाँ बच करके जाओगे, आज मैं तुम्हें यमलोक पहुँचाता हूँ। तो फिर चक्रवर्ती बोलता है कि मुझे मत मारो, तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूँ। वो कहता है कि पानी पर महामंत्र लिखो और पैरों से मिटा दो। चक्रवर्ती बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो महापाप है। तो फिर बोला कि फिर ठीक है, डूबने को तैयार हो जाओ। तो इस प्रकार उसको परेशान करके अंत में वो कार्य कराता है और फिर भी उसको छोड़ता नहीं है। मरकर चक्रवर्ती सप्तम पृथ्वी में नारक बन जाता है। तो चक्रवर्ती की लक्ष्मी भी जब उसका साथ छोड़ देती है तो बाकी लोग कहाँ लगते हैं फिर। लक्ष्मी किसी में प्रीति नहीं रखती, चाहे वो कुलीन हो, चाहे धीरवीर हो, पंडित हो, शूरवीर हो, पूज्य हो, धर्म में स्थित हो, अच्छे आचरण वाला हो, सज्जन हो या महापराक्रमी हो, लक्ष्मी का किसी से प्रेम नहीं होता। आचार्य कहते हैं कि तब तक लक्ष्मी को भोग लो, तब तक करुणापूर्वक दान कर लो अथवा सत्पात्रों को दान कर लो, जब तक पानी की तरंग जैसी चंचली है लक्ष्मी, दो तीन दिन तुम्हारे साथ है फिर तो कोई ठिकाना नहीं है। फिर आगे कहते हैं जो लक्ष्मी का संचय करता है लेकिन न दान देता है न उसका स्वयं उपभोग करता है, स्वयं भी सेवन नहीं करता, दूसरों को भी नहीं देता, वो अपने आप को ठगता है और उसकी मनुष्य पर्याय व्यर्थ हो जाती है। जो लक्ष्मी का संचय करके उसको जमीन के नीचे गाड़ देता है बहुत गहराई पर, वह अपनी लक्ष्मी को पत्थर बना देता है। क्योंकि वो पत्थर जैसे जमीन के नीचे रहता है वैसे ही उसकी लक्ष्मी भी जमीन के नीचे गड़ी रहती है। फिर आचार्य कहते हैं जो निरंतर लक्ष्मी को इकट्ठा करता है लेकिन न दान देता है न भोगता है, उसकी वह लक्ष्मी अपनी होकर भी पराई लक्ष्मी के समान है, क्योंकि उसके किसी काम की नहीं। जो लक्ष्मी में आसक्त होकर अपने आप को बहुत कठिनाइयों में डाल देता है, एक एक दिन बड़ी मुश्किल से काटता है, भोजन के समय भोजन नहीं करता, वह राजाओं के लिए अथवा अपने रिश्तेदारों के लिए मूर्खतावश सारी लक्ष्मी अर्पित कर जाता है। कृपणेन समो दाता न भूतो न भविष्यति, कंजूस जैसा दाता न हुआ न होगा, क्योंकि वो एक पाई खर्च किए बिना पूरा धन छोड़ जाता है मरने के बाद, पूरी संपत्ति छोड़ता है, उसमें से कुछ भी खर्च नहीं करता। जो लक्ष्मी की वृद्धि करता है अनेक प्रकार की चतुराइयों के द्वारा लेकिन तृप्ति को प्राप्त नहीं होता, सब प्रकार के कमाई के साधन अपनाता है, रात दिन पैसे पैसे का ही विचार करता रहता है, भोजन समय पर नहीं करता, रात को चिंता के कारण नींद नहीं ले पाता, वो लक्ष्मी का स्वामी नहीं है, लक्ष्मी का दास है। क्या आचार्यों की वाणी है, एकदम एक एक गाथा पढ़ो तो एकदम अंदर तक के जाती है बात। जो बढ़ती हुई लक्ष्मी का निरंतर धर्म कार्यों में दान करता है वह विद्वानों द्वारा प्रशंसित होता है और उसकी लक्ष्मी सार्थक हो जाती है। ऐसा जानकर जो धार्मिक लोग कर्मोदय से पीड़ित हैं उनके लिए निस्वार्थ भाव से दान कर देना चाहिए। देखो एक विचित्र बात कर रहे हैं, सुपात्र दान की बात आप सब सुन चुके हैं, सबको पता है कि भाई साधुओं के लिए आहार दान करना चाहिए, औषध दान करना चाहिए, या मंदिर जी के लिए जितना आवश्यक है उतना दान करना चाहिए अथवा प्रतिष्ठा आदि उत्सवों के लिए दान करना चाहिए, ये तो सबको पता है। लेकिन यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं कि वे धार्मिक जन जो कर्मोदय से किसी कारणवश संकटग्रस्त हैं उनके लिए भी निस्वार्थ भाव से दान अवश्य करना चाहिए, और ऐसा करने पर जीवियम सहलम हवे, जीवन सार्थक होता है, सफल होता है। वरना आप जहां बहुत लोग दान कर रहे हैं वहां आप दान दे रहे हैं तो अच्छी बात है, दान देना गलत नहीं है, लेकिन जहां जरूरत है वहां भी एक नजर डाल लो। फिर आचार्य कहते हैं कि पानी के बबूले के समान धन, यौवन, जीवन, ये सब अस्थिर है। इस बात को देखते हुए, जानते हुए भी जो समझते कि नहीं नहीं मेरा जीवन तो अभी लंबा होगा, तो उसके बारे में यही कहा जा सकता है कि मोह बड़ा बलवान होता है। यानी मोह के कारण वो अपने विषय में भ्रमित है, वो देखता है कि पड़ोसी समाप्त हो गया और उस मोहल्ले में फलाने व्यक्ति का अंत हो गया और फलाने गांव में मेरा रिश्तेदार भी चला गया, ये नहीं देखता कि मेरा भी किसी समय नंबर आ सकता है।